الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. یعنی علم کی جو طلب ہے، طلب العلمی، طلب اس کی جو تحصیل ہے، حاصل کرنا، اکوائر کرنا، اس کے لیے ایفرٹ ڈالنا نالج حاصل کرنے کے لیے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اسے فرض کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں. تو ظاہر ہے اب جو دینی یا ہماری شریعت کی اصطلاح میں، یعنی قرآن و حدیث کی زبان میں جو مراد ہے وہ علم ہوتا ہے، جو ظاہر ہے وہ اصل تو اس میں وہی علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لوگوں کے لیے، جنرل پاپولیشن کے لیے، جو انسانوں کے لیے جو میسج آتا ہے. اصل جو علم ہے وہ تو وہ ہے آف کورس، بٹ نالج حاصل کرنے کے لیے، یعنی انلیس اینڈ انٹل کوئی جس میں غیر شرعی تقاضا نہ ہو، ڈیزائر یا نیت، انٹینشن نہ ہو، تب تک تو علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہر بندے پر فرض ہے کہ وہ نالج، علم حاصل کرے، دین کا ہو، ایون دنیاوی علم حاصل کرنا، اگر اس میں جہاں تک کہ کوئی نہ کوئی غیر شرعی پہلو یا اینگل نہ ہو، تب تک تو وہ بھی حاصل کرنا چاہیے. وہ اس کے لیے بھی انشاء اللہ تعالیٰ اس میں بھی فائدہ ہی ہوگا انسان کو، دنیا بھی اس کی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. ظاہر ہے اللہ اور کسی بھی نبی یا رسول پر ایمان لانے اور نبی کو رسول مان لینے کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہے آدمی پر وہ یہی عائد ہوتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرنے اور جاننے کی کوشش کرے کہ جو علم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے ہیں اس میں مجھے کیا احکامات، یو نو واٹ آر مائی ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو جب تک وہ اس کی نالج ہی نہیں حاصل کرے گا، اس کی، اس علم کو حاصل ہی نہیں کرے گا، تب تک وہ اس پہ عمل کیسے کرے گا، اسے پتہ کیسے لگے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا غلط پر ہوں. اور اسی لیے جو اس علم کا، جو سارے جو دین ہے، جو پوری آئیڈیالوجی ہے اسلام کی، وہ اس کی بنیاد ہی اسی علم پر ہے، اسی نالج پر ہے، نالج اس کو اکوائر کرنے پر ہے. اس کے لیے اس کو سیکھنا، سکھانا ایمان کے بعد، یہ سب سے بڑا گویا کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو فرض ہے. ظاہر ہے اصل جو علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے، اس میں اگر وہ شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو اصل تو نالج انسان کی جو مشاہدے سے ہوتی ہے، یعنی صحابہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو حاصل کیا، کوئی کتابیں رکھ کر، کوئی ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھ کر نہیں، بلکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈوز اور ڈونٹس، جو ہدایات تھیں، ان کی جو اقوال تھے، یعنی ان کی جو سینگس تھیں، ان کی حدیث جسے کہا جاتا ہے، افعال کون ان کی ایکشنز تھے، یا جس کام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، جو ان کی انسٹرکشنز تھیں اس کے مطابق ڈائریکٹ عمل کیا. اصل تو علم انہوں نے اس طرح سے حاصل کیا. اور پھر تابعین کے دور میں بھی جو صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، وہ اصل طریقہ کار تو اس کا آف کورس یہی تھا کہ وہ ڈائریکٹ ون ٹو ون، جو ایک میسج کنوے کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی بکس کے ذریعے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ایک استاد اور شاگرد ایک دوسرے کو کچھ سیکھ سکھا رہے ہوں. ظاہر ہے اسی یہ علم کو پھر حاصل کرنا، اور پھر اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اسے ایک وراثت الانبیاء کہا گیا کہ انبیاء کی میراث ہے علم. جو عالم ہوتا ہے وہ گویا کہ انبیاء کی میراث ہونے کہا گیا کہ وہ اتنے ہائیسٹ لیول پر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے، وہ نالج ہوتی ہے جو انہیں بتا سکتی ہے واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف مائی شریعت. تو اس کو جگہ جگہ بہت زیادہ ایمفسس کے ساتھ بتایا گیا، بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتویٰ، وہ خطبہ فرما رہے تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے، یا وہ کھڑے ہو کر ممبر پر غالباً، تو صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے کو ایسی انہوں انسٹرکشنز دیں اور کچھ ایسے معاملات بیان فرمائے اچھائی کے، اور اس کے بعد کہا کہ ایسے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو لوگوں کو علم حاصل کرتے ہیں، خود تو ان کے پاس نالج ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کو نہیں پہنچاتے، دوسروں کو واضح نصیحت نہیں کرتے، امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر، یعنی ان کو ان کے ڈوز اور ڈونٹس نہیں بتاتے، ایسے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کیا ہے جو یہ سیکھتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، ان لوگوں سے جن کے پاس علم ہے، نالج ہے، سمجھ بوجھ ہے، ان سے وہ سمجھتے نہیں ہیں مسائل یا ان سے واضح و نصیحت حاصل نہیں کرتے، ان سے اپنے عوامر اور نہائی جنہیں کہا جاتا ہے یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اور اس کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صحیح وسق وعید بیان فرمائی، اولا عاجلنہم بالعقوبۃ فی الدار دنیا، کہ میں انہیں اس دنیا میں ہی سزا دلواؤں گا، بڑی سخت وعید سنائی. تو اس پر ظاہر ہے صحابہ کرام بڑے ڈر گئے، اور خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. بعد میں لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ یہ غالباً فقال نرا و انا بالاشعرین، کہ وی تھنک کہ یہ اشعرین ایک قوم تھی اس زمانے کا، ایک قبیلہ تھا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً فرما رہے تھے. تو ان لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ بہت گھبرائے اور حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو آپ ہمیں بتائیں، یعنی آپ نے ہمارے بارے میں ایسا کہا، ان کو بڑی فکر ہوئی ظاہر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ، اور دوبارہ وہی بات رپیٹ کی کہ ایسے لوگ جو خود جانتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم ہوتا ہے لیکن آگے نہیں کنوے کرتے، اس کی تبلیغ نہیں کرتے، اس کو دعویٰ نہیں کرتے آگے سے، تو وہ بہرحال، اور جو لوگ سیکھتے نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میں ان کو اس دنیا میں ہی سزا دلواؤں گا. ایسا تین مرتبہ ہوا، تین مرتبہ انہوں نے پوچھا اور تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس پہ وہ ظاہر ہے بہت ڈر گئے وہ قبیلے والے، اور انہوں نے کہا فہم سناتن، کہ ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیجیے آپ، ہم ایک سال میں انشاءاللہ اس پہ کریں گے. ہوا یہ تھا، وہ جو اشعرین قبیلہ تھا، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا، اس سے کہا جاتا ہے اشعرین، انہیں جس علاقے میں رہتے تھے وہاں بہت سارے بدو اور یو نو ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے، تو وہ انہیں بہرحال یہ جو علم والے اور جو مسلمان تھے نالج والے لوگ، یہ ان کو علم سکھاتے نہیں تھے، بس اپنی حد تک تو عمل تھا لیکن آگے کنوے نہیں کرتے تھے. تو ان کو اس بارے میں بہت لاکھ، اور ان کے بارے میں جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ بڑی وعید ہے کہ آگے کیوں نہیں سکھانے پہ، اور جو نہ جاننے والے ہیں وہ آگے سیکھتے کیوں نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ڈرے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلت مانگی انہوں نے ایک سال کی کہ آپ ہمیں ایک سال دے دیں، پھر ہم اس پر انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے، اور ہم ایک سال بعد دوبارہ ویل گیٹ بیک ٹو یو آن دیٹ، ہم اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سال کی مہلت دے دی، بالکل آف کورس کہ ٹھیک ہے تم ایک سال کے لیے. جو گویا کہ یہ ون ایئر ایجوکیشنل پلان دیا، پہلا جو ہماری اسلام کی مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر فرسٹ ون ایئر ایجوکیشنل پلان دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ٹھیک ہے اس ایک سال کے اندر دیز آر دا تھنگز یو ہیو ٹو ڈو، تم نے جانا ہے اور ان لوگوں کو علم کی تعلیم وغیرہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا سب دینی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ مہلت تو دے دی، لیکن آگے یہ ایک آیت تلاوت فرمائی قرآن پاک کی، جس میں لعن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ ولبئس ما کانوا یفعلون، کہ اس سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے یو نو لعنت فرمائی بنی اسرائیل کے لوگوں پر جنہوں نے کفر کا یو نو ارتکاب کیا داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. اور یہ اس وجہ سے ہوا، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، ایک دوسرے کو ان گناہوں اور برائیوں سے روکتے نہیں تھے، اور گویا وہ ان کا ارتکاب تو کرتے تھے، دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ان کا بہت ہی برا فیل تھا، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت ہی برا کام کرنے والے لوگ تھے. اور ان کا کرائم یہاں پہ کیا بیان فرمایا، وہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کو آگے کنوے نہیں کرتے تھے میسج. بہرحال تو خیر اینی ویز، بڑی سخت وعید اس میں آتی ہے اس روایت میں. اور لیکن بہرحال ये फ़र्स्ट वो हमें मिलता है इस्लाम की शरीयत में, एक एम्फसिस इल्म हासिल करने के ऊपर, कि बाकायदा उन कौम वालों को एक 1 ईयर एजेंडा दिया, एक प्लान दिया, एजुकेशनल प्लान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम इस 1 साल में जाओ और अपनी कौम को जो जानने वाले नहीं हैं, अनएजुकेटेड और जाहिल लोग, उनके दीन की तालीम दो ताकि वो किसी भी समझ बूझ वाले हो बनना शुरू हो जाएँ। और ज़ाहिर है जो इल्म सीखते सिखाते हैं उनके बारे में तो बहुत सारी हमें फ़ज़ाइल रिवायात से पता चलते हैं, जैसे कि अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो अक्सर ये कहा करते थे, मन सलका तरीकन यतलुबु भी इल्मन सलक अल्लाह भी तरीकन मिन तुर्किल जन्ना, कि जो कोई एक रास्ते पर चला, घर से निकला कि मैं इल्म हासिल करने के लिए किसी मस्जिद मदरसे या इवन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होगा, मेरी दुनिया और आखिरत संवरेगी इस इंटेंशन के साथ, नीयत के साथ, अब वो इल्म हासिल करने के लिए निकला तो अल्लाह सुबहाना ताला उसके उस रास्ते को जन्नत के रास्तों में से मेरे बना देंगे, सुबहान अल्लाह। और यही नहीं बल्कि वह इन्नल्लाह मलाइका ला तज़ाउ अजनिहतिया, मलाइका जो फरिश्ते होंगे वो उसकी रज़ा के लिए अपने परों को, अपने बाजुओं को बिछा देंगे उस बंदे के जो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है। और यहीं तक भी नहीं बल्कि इन्नल आलिमा यस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाती व मन फिल अर्ज़ वल्हीतानिफी जौफिल माँ, के पूरे के पूरे समतारे सारे आसमान और जो कुछ आसमानों में ज़मीन में है सब के सब उस बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, यहाँ तक कि पानी के पेट में जो मछली होती है, इवन फिश इन द डीप ओशन, वो भी उस बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करती है। क्योंकि आगे इस रिवायत में फरमाया वा इन्ना फ़ज़ल अलआलिमी अलालआबिदी का फ़ज़ल अलकमरी लैलतम तलबद्र अला सायर अलकवाब, के जो जिस तरह से चांद को 14वीं का जो चांद होता है 14th जो लैलतुल बद्र यानी कि 14th मून होता है, जिस दिन रात को चमकता होता है पूरा चांद उस रात में, उसको जिस तरह से तमाम के तमाम सितारों पे एक फजीलत हासिल होती है कि उस रात वो तमाम के तमाम जो स्टार्स होते हैं उनसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, विजिबल होता है, तो उसे एक फजीलत को या के हासिल होती है। इसी तरह एक आलिम को एक आबिद पर फजीलत हासिल है, यानी आबिद है पूरी पूरी रात मुसल्ले पर बैठा है, पूरा पूरा दिन रोज़े रख रहा है और इबादत में आमाल में मशगूल है, लेकिन एक आबिद आलिम आदमी है अगर उसके पास नॉलेज है तो उसको इतनी ज़्यादा फजीलत है कि वो साबित पे भारी है। और आगे ये भी फरमाया वा इन्नल उलमा वरासत अल अंबिया, क्योंकि ये जो उलमा होते हैं ये अंबिया के वारिस होते हैं, और वा इन्नल अंबिया लम यूरिसु दीनारन वला दिरहमन व इन्नमा वरसुल इल्मा व फमन अखज़ा अखज़ा बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन, क्योंकि जो अंबिया होते हैं उनकी कोई विरासत नहीं होती, कोई दिनार दिरहम कोई गोल्ड सिल्वर कोई पैसे माल जायदाद वो छोड़ के नहीं जाते इस दुनिया से, बल्कि जो उनकी विरासत होती है जो उनका जो वो पीछे छोड़ के जाते हैं वो असल में उनका जो तरका होता है वरसे विरसा जिसे कहा जाता है वो इल्म होता है जिसे वो छोड़ कर जाते हैं। तो ज़ाहिर है उसने बहुत बड़ी कामयाबी और खुशबख्ती एक सॉर्ट ऑफ हासिल कर ली जिस बंदे ने इल्म हासिल कर लिया, तो इसीलिए उसे कहा गया वरासतुल अंबिया, जो आलिम होता है वो अंबिया का वारिस हो जाता है गोया के उसके पास, क्योंकि वो नॉलेज होती है इस वजह से। और ज़ाहिर है वो अगर वारिस है अंबिया का तो ज़ाहिर है उसका मरतबा ऑटोमेटिकली बुलंद हो ही जाएगा। और यही वजह है कि एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार में कहीं जा रहे थे और लोग अपने कारोबार में जनरल बिज़नेस ट्रांजैक्शंस में मशगूल थे, तो उन्होंने लोगों से कहा क्या हो गया तुम्हें यहाँ, तुम यहाँ इन कामों में लगे और वहाँ मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मीरास तकसीम हो रही है। तो लोग गए फ़ौरन और वहाँ जाके देखा तो कुछ लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ आपस में एक दूसरे को शरई मसाइल वगैरह बता रहे हैं, और लोगों ने आके कहा कि वहाँ तो कोई मीरास तकसीम नहीं हो रही। तो रसूलुल्लाह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास और आपका तरका है, यानी जो आप छोड़ के गए हैं, कि लोग आपस में जो इल्म हासिल कर रहे हैं सिखला रहे हैं दूसरों को, ये अम्बिया की मीरास होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास हासिल करने का मतलब ही है कि जो मस्जिद में लोग एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को या जो एजुकेट कर रहे हैं दूसरों को, ये वो विरासत तकसीम हो रही है गोया कि इसके हासिल करो गोया, खैर ये उनका एक वो था, तो इसकी बहुत ही बड़ी फजीलत है। और यहीं तक ही नहीं, एक रिवायत में ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन खरज फी तलब अलमी फ़हुआ फ़ी सबील अल्लाह हत्ता यरज, जो कोई इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो उसका जो रास्ता है वो ऐसे होता है गोया कि वो जिहाद पर अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, और यहाँ तक कि जब तक वो वहाँ से इल्म हासिल करने की वहाँ से वापस घर नहीं पहुँच जाता, गोया कि वो जिहाद में निकला हुआ है, इतना उसका बड़ा एक मरतबा है। और इसके अलावा यहाँ तक भी आता है, इन अल्लाह मलाइकत वाल समावाती वाल अर्ज़ हत्त नमला तफी हुजरतिया व हत्त अलहूती लयुसल्लून अला मुअल्लिम अन्नासिल खैर, जो तमाम के तमाम फरिश्ते हैं, जो कुछ अहल समावाती वाल अर्ज़ आसमानों में ज़मीन में जो कुछ भी बसता है, यहाँ तक कि एक चींटी जो अपने सुराख में होती है, और यही तक ही नहीं बल्कि एक मछलियाँ जो पानी में होती हैं वो भी अपने उस बंदे के लिए दुआ खैर करती रहती हैं, जो लोगों को दीन की तालीम वगैरह देता है, जो लोगों को ज़रा सी नॉलेज फराहम करने की, एजुकेट करने के लाइन पे लगा होता है, उसके लिए तो पूरी की पूरी दुनिया, आसमान की हर मखलूक उसके लिए इस्तग़फ़ार करने पे लगी होती है। और एक चूंटी और मछली की मिसाल दी कि वो तक इस काम पे लगे होते हैं, तो ज़ाहिर है उसका एक बहुत बड़ा मरतबा होता है ज़ाहिर है। और एक मरतबा अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के में किसी एक जगह से गुजरे जहाँ पे दो मजलिसें लगी हुई थी मस्जिद में किसी, उनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों ही खैर पर हैं, लेकिन एक जो है वो दूसरे से ज़्यादा अफजल है। और क्यों, उसकी क्या वजह फरमाई कि जो पहली उसमें लोग थे वो अपनी यदून अल्लाह व यरगबून अल्लाह की जो दुआ मनाजात वगैरह हैं अपने अमाल में नफली इबादात वगैरह में लगे हुई थी एक जमात के लोग कुछ, और जो दूसरी जमात के लोग थे वो क्या कर रहे थे कि इल्म वगैरह हासिल कर रहे थे, एक दूसरे को सिखा रहे थे। तो अल्लाह ने कहा कि ये जो इबादात में दुआओं में लगे हुए हैं इनको अल्लाह की ज़ाहिर फजी इनकी मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह चाहे तो अता फ़रमा दे और चाहे तो ना अता फ़रमाए, लेकिन ये जो दूसरी मजलिस है इसके जो लोग हैं इल्म दीन हासिल करने में और ना जानने वालों को सिखाने में लगे हुए हैं, लिहाजा उनका दर्जा जो है वो इनसे बरतर और अफजल है। और आगे वजह यही फरमाई, वइन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन सुम्मा जलस फीहिम, कि मैं खुद बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं जो भेजा गया हूँ इस दुनिया में, मैं एज़ अ मुअल्लिम, एज़ अ टीचर भेजा गया हूँ। तो टीचर का मरतबा जो होता है वो बहुत ही हाई और बुलंद होता है, और आप उन्हीं लोगों में जाकर फिर बैठ गए। और एक हसन बसरी रहमतुल्लाह एक रिवायत में नकल फरमाते हैं कि जो जिस किसी पर इस हाल में मौत आई कि वो बंदा अगर इल्म हासिल करने पे लगा हुआ था, तो क़यामत के दिन फ़बैनहू व बैन नबीय्यीन दरजतु वाहिदतु मिनल जन्नत, जन्नत में उसका और नबियों का जो अम्बिया की जो पैगंबर सारे हैं उनका मरतबा एक साथ होगा जन्नत में, जो बंदा इस हाल में मरा कि उसकी मौत के वक्त वो इल्म हासिल करने पे लगा हुआ था ख़ास तौर से शरीयत का। और एक दूसरी रिवायत में तो यहाँ तक हज़रत हसन रहमतुल्लाह एक दो आदमियों की मिसाल से बयान फरमाते हैं कि बनु इसराइल के दो लोगों लोग थे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि वो एक जो उनमें था वो आलिम था और नमाज फ़र्ज नमाज वो पढ़ता था, और फ़र्ज़ नमाज के बाद वो बैठ जाता था लोगों को टीचिंग करने पे, इल्म देने पे लोगों को लग जाता था। और जो दूसरा बंदा था वो पूरी पूरी रात मुसल्ले पे बैठ के नमाज़ें और रोज़े हज वो दिन भर रोज़े रखता था और पूरी पूरी रात इबादत में लगा होता था, तो इनमें से कौन अफजल है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज़ल हादल आलिम अल्लज़ी युसल्लिल मक्तूबा सुम्मा यजलिसु फतुअल्लिमु अन्नास अल-खैर अला अल-आबिद अल्लज़ी यसूमु अन-नहार व यकूमु अल-लैल कफ़ज़ली अला अदनाकुम, कि जिस तरह ये जो आलिम है जो सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़कर दूसरों को इल्म देने पर लगा होता है, इसकी फजीलत इस दूसरे आबिद बंदे पर जो कि पूरी रात मुसल्ले पे बैठ के बातें कर रहा है और पूरा दिन रोज़े रख रहा है, उस पर उसकी फजीलत उसी तरह है जैसे कि मेरी तुम में सबसे अदना जो दर्जे का सहाबी है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जिसका स्टैचर इतना नहीं भी है, जो सबसे अदना सहाबी है होगा उससे जिस तरह से मुझ पर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद उन पर जिस तरह से फजीलत है, ज़ाहिर ऑफ़ कोर्स वो फजीलत जैसे उस आलिम बंदे को उस जो के इल्म की एजुकेट करने पे लोगों को लग जाता है सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज के बाद ही, वो उसको या कि आबिद बंदा जो कि पूरी पूरी रात और इबादत में लगा हुआ है और पूरा पूरा दिन रोज़े रख रहा है उससे उस तरह से फजीलत हासिल होगी उस बंदे को, तो ज़ाहिर है उसकी एक फजीलत अपनी बयान फरमाई। तो इसके बहुत सारे हम देखते हैं कि फ़ज़ाइल हमें इल्म हासिल करने के और इल्म देने के, आगे प्रोपागेट करने के आपको मिलते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसमें फिर सिर्फ इस नीयत को भी देखना पड़ेगा इंसान की, कि इसकी असल में नीयत क्या थी, इसका असल में इंटेंशन क्या थी। कि अगर कोई बंदा सिर्फ दिखावे के लिए या फ़ायदा हासिल करने के लिए कर रहा है तो वो बेकार है सारा अमल ही उसका। उन दुनियावी किसी अगर उसके दिल में कोई ऐसा विश या डिज़ायर या वांट है, जैसे कि रिवायत में उस कैटेगोरिकली क्या कहा, मन तअल्लमा इल्मा मिम्मा युब्तगा बिही वजल्लाहु ला यतअल्लमु इल्ला युसीबु बिही अर्ज़ा मिनद दुनिया लम यजिद अरफ अल जन्नत यौमल क़ियामत यानी रीहाहू, कि जो वो इल्म जिससे अल्लाह की रज़ा चाही जाए, यानी जो अल्लाह और के जो दीन है, किताब और सुन्नत का इल्म है, अगर वो कोई बंदा अक्वायर करता है और वो इसको अक्वायर करने के बाद दुनियावी माल और दौलत कमाने पे लग जाता है, तो उस इल्म को वो इस मकसद के लिए अगर हासिल करता है तो क़यामत की वो के दिन वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ सकेगा, बहरहाल जान भी नहीं सकेगा या खुशबू तक नहीं सूंघेगा। बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स आते हैं रिवायात में, और एक रिवायत में ये भी आता है मन तअल्लमल इल्म लिगैर अल्लाह वराद बिही गैर अल्लाह फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि किसी ने इस नीयत से इल्म हासिल किया, उसकी उसका जो मकसद है, उसकी जो इंटेंशन है, वो अल्लाह की रज़ा नहीं है बल्कि गैरुल्लाह की रज़ा, यानी वो दुनिया उससे कमाना चाह रहा है, तो कोई ऐसे इस लीनियत से अपने आप को एजुकेट कर रहा है कि जी मैं कहीं कोई टीचर लग जाऊं, कहीं मैं किसी कहीं जॉब कर लूं, या किसी भाई मेरी उसकी इंटेंशन ये हो कि किसी ना किसी तरह से मेरी मुझे मैं कोई अच्छा इससे फाइनेंशियल या कोई मटीरियलिस्टिक बेनिफिट हासिल कर लूँ। अगर वो इस तरह से करता है तो ये उसके लिए मक़ादा मिन नार, आग का गोया के वो अपने लिए ठिकाना बना रहे। और ज़ाहिर है ये उन उलमा को जिस तरह से जितने उनके फ़ज़ाइल और उनकी फजीलतें बयान होती हैं कि जितना फ़ायदा है और जितने उनके मरतबे बुलंद हैं, नबियों के साथ उनको कंपैरिजन दिया जा रहा है, तो उसी तरह से उन्हें तंबीह भी की जाती है, वईद भी है उनके लिए कि अगर वो दुनियावी कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए कर रहे हैं, कोई भाई मुझे मेरी बड़ी वाह वाह हो, मुझे कोई बहुत बड़ा पीर साहब बोले, कोई बहुत बड़ा मुफ्ती, कोई मौलाना बोले, कोई मौलवी बोले, कोई आलमा साहिबा घूम रही हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई मुझे इस नीयत से कि भाई लोग मुझे बहुत बड़ा समझें, कोई अल्लामा समझें, कोई मुझे आलिम समझें, कोई मुझे बहुत बड़ी कोई बाजी जान या आपा जान या कोई पीर साहब या कोई शेख साहब हूँ मैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अगर कोई इस नीयत से हासिल कर रहा है कि मेरा मुझे दुनियावी फ़ायदा, उसको अपनी ईगोइस्टिक कोई ईगो को वो बूस्ट करने के लिए इल्म हासिल कर रहा है, या वो दुनियावी फ़ायदा हासिल कर रहा है, कोई माली फ़ायदा हासिल कर रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ तो जी मुझे फ़लाँ मद में पैसे दे दो, फ़लाँ मद में पैसे दे दो, तो उसके लिए बहुत सख्त वईद है, उसको तो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ सकेगा, जैसे कि रिवायत में आता है। और उसकी मिसाल एक रिवायत में ऐसे दी गई हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल आलिम अल्लज़ी युअल्लिमु अन्नास अल-खैर व यंसा नफ्सहु कमसल सिराज युज़ीउ अन्नास व युहर्रिक नफ्सहु, उसकी मिसाल उस ऐसे सिराज यानी लैंटर्न की तरह है, उस ऐसे चराग की तरह है कि वो ख़ुद तो जल रहा है और लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन वो गोया के अपने नफ्स को सिवाय जलाने के कुछ नहीं कर रहा, लोगों को तो वो रोशनी फराहम कर रहा है लेकिन अपनी पर्सनल ज़ात को, अपनी हस्ती को बस वो सिर्फ जला रहा है। इवन एक लाइट है, बल्ब है, जब वो ऑन होती है तो अंदर से उसकी एक लाइफ टाइम उसके होता है जी ये बल्ब जो है ये एनर्जी सेवर है, इसकी जो स्पैन है दिस इज़ इसकी 1 ईयर वारंटी है, 1 साल चलेगा, 1 साल बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो उस 1 साल के दौरान अब ये बल्ब जो जल रहा है वो अपने आप को जला रहा है और दूसरों को लाइट पहुंचा रहा है, लेकिन इससे उस बल्ब को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसकी लाइफ में सिर्फ कमी आ रही है, ज़्यादती नहीं हो रही। तो उस चिराग की मिसाल उस आलिम की तरह है कि जी वो अपनी ज़िंदगी तो गुजार रहा है, ख़ुद जल रहा है, ख़ुद गोया के मेहनत कर रहा है, अपनी एफ़र्ट डाल रहा है, लेकिन दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, वो अपने आप को कोई फ़ायदा नहीं कर रहा अगर उसकी नीयत जो है, इंटेंशन जो है वो सही नहीं है, अपना अमल उसका इसके मुताबिक नहीं है जो कि वो प्रोपगेट कर रहा है या टीच कर रहा है, तो उसको वो फ़ायदा देने वाली चीज़ नहीं है। और यही बात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में भी आता है, अशद्दुन्नास अज़ाब यौमल क़ियामत आलिमुन लम यन्फ़अहु बिइल्मुहु, सबसे बदतरीन लोग जो क़ियामत के दिन होंगे वो होगा आदमी जो जिसके इल्म ने उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाया होगा, यानी ख़ुद तो उसने इल्म तो हासिल किया, नॉलेज भी ली, एक्वायर भी की, लेकिन अपने आप को उसके मुताबिक नहीं ढाला और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं की, तो गोया उसका जो इंसान है उसका اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب کو نالج حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو فار دا بیٹرمنٹ آف آور سیلوز اینڈ فار دا امہ اس کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے اسے ذاتی مقصد کو اس سے نکال دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.